Shanti. Good morning. आज सोमवार का दिन, शिव बाबा का दिन और गीत भी है. आखिर वो दिन आया आज तो बाबा ने बहुत प्यार से बताया है कौन आया, किसके साथ बात कर रही है. और यदि लोगों को ये पता चले कि ये शिव बाबा आए हैं तो फिर तो कभी भी फादरहुड की बात न कहे. सन्यासी फादरहुड की बात कहते हैं, सर्वव्यापी की बात कहते हैं, तो उसमें फिर वर्षा का तो किसको कौन देवे क्या देवे. परंतु जब ब्रदरहुड कहते हैं तो एक शिव बाबा के द्वारा ही सर्व आत्माओं को गति सदगति प्राप्त होती. और तुम बच्चों को तो बाबा के द्वारा जो बाप ज्ञान सागर है वो ज्ञान आपको मिलता अभी जो आप धारण करते हो और इस ज्ञान के आधार से पतित से पावन बनते हो. और फिर साथ साथ बाबा ने ये भी कहा है आप कितने भाग्यशाली हो. याद आता कि हम कितने भाग्यशाली हैं. कल बाबा ने पूछा कि कहां तक आपको यह सदा याद रहता कि हम भाग्यवान हैं. तो आज बाबा ने कहा है कि आप बच्चे ही सारे विश्व में सबसे अधिक भाग्यशाली हो और भगवान आपको पढ़ा रहे हैं राजाई के लिए. वैसे तो यूनिवर्सिटी में इंजीनियर डॉक्टर की पढ़ाई होती, परंतु आप बच्चों को ये विशेष राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ाई है जो आज तक न कहां मिली है और न मिल सकती. भगवान ही आकर के आपको राजयोग सिखाकर राज ऋषि बनाए, फिर राजाई देते. राजाई से भी बाबा कहते सत्युग में तो महाराजा होते, बाद में राजाएं आती. तो ये है आज की बाबा की मुरली, 27 तारीख जुलाई मास. कल तो दीदी का दिन, तो दीदी की भी कई स्मृतियां. मैं समझती कई यहां बैठे होंगे विशेष भाइयों की तरफ से लगता है कौन है जिसने दीदी की पालना ली. थोड़ी है विशेष आत्माएं. हाँ, एक माता जी. यहां पर आजकल कुछ और नहीं है तो एको आर इस कारण से आ रहा. कच्ची दीवारें हैं ना, छत भी देखो कच्ची है, तो मुख्य तो इस कारण से. मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं. तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो. प्रश्न, निराकार बाप में कौन सा संस्कार है जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? उत्तर, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसीलिए उन्हें ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। कहीं पूछते हैं कि कौन आपको ये पढ़ा रहा, कहां से ये ज्ञान मिल रहा, इतना अलग ज्ञान, इतना ऊंचा ज्ञान, इतना लॉजिकल ज्ञान कौन दे रहा? और गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना, ये महिमा किसकी? एक बाप की। शिवाय मैं ऊंच ते ऊंच भगवान है ना? बच्चे जानते हैं वो हमारा बाप है, ऐसे नहीं कि हम सभी बाप है। गाया भी जाता है, सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों ने कहा, उनके कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है जिससे वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा ही जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स है, आत्माएं है। सबका गॉड फादर एक ही है। उस बात की सभी प्रार्थना करते हैं, एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए। वो है सतो प्रधान भक्ति, सतो प्रधान पूजा। ये भी समझाया है, तीन विशेष शब्द जो बाबा कई बार याद दिलाते हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं सतगति के लिए। सतगति कहा जाता है, बाबा की डेफिनेशन सतगति बहुत क्लियर है, मनुष्य तो उसमें गड़बड़ की बातें बता देते। और बाबा कहते सतगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को, सत्युग। ये आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है, अनेक नाम घर के, सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहां तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में आती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारों से बात होती, आवाज नहीं होता। तीनों लोकों को भी तुम जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में यह अच्छी रीत बैठा है। रास्ते आते समय लगता था कि हम सूक्ष्म वतन में आ रहे हैं, और यहां भी सब तरफ जिस तरह से वातावरण है, लगता है कि बाबा ने यहां ही सूक्ष्म वतन बना दिया। मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है, ये सृष्टि चक्कर लगाती है, इसको कहा जाता है सृष्टि चक्कर लगाती है। तो बाबा का इसके लिए दूसरा नाम, इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी परिवर्तन होता, हिस्ट्री में तो हर दिन नई बात नई बात नई बात, परंतु ज्योग्राफी का भी जो पहले वातावरण था, सारी इकोलॉजी थी, नेचर था, वो भी देखते देखते, जो हमारी आयु वाले होंगे उनको देखते देखते, देखो क्या हो गया है वातावरण को, कहाँ कहाँ फिर भी बहुत सुंदरता है, परंतु तो भी वातावरण पूरा ही बिगड़ा हुआ। बारिश को जिस समय आना चाहिए नहीं आता, और जहां पर ज्यादा बारिश हो जाती फिर फ्लड्स हो जाते, और कहां फिर कम बारिश गिरती तो अनाज ही खत्म हो जाता। तो सब बातों में मनुष्यों ने ये हालत बनाई है, परंतु सत्य की ज्योग्राफी को याद करो, किस तरह से पेड़ होंगे, पानी होगा, कैसे बाबा ने बहुत डिटेल में अव्यक्त बाप दादा ने, साकार बाबा में कैसे वहां शुद्ध सब कुछ होगा, सतो प्रधान प्रकृति। तो बाबा कहते हैं कि ये जो विश्व का गोला घूमता है उसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों बातें आ जाती, मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, ऊंच ते ऊंच है बाप। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वो ही जानते हैं। लोगों को ये मालूम हो कि फिर से प्रकृति के सारे गमसान के बाद, प्रकृति का नाचने के बाद फिर से होगा स्वर्ग अथवा सत्युग, तो उनकी सारी चिंता मिट जाए। नहीं तो विदेश में तो आज का शब्द ही आता है इको एंग्जायटी। कई जो नौजवान है वो कहते हैं कि हमको बच्चे भी नहीं चाहिए, ऐसे संसार में बच्चे को ले आएंगे 10 वर्ष के अंदर प्रकृति की क्या हालत होंगी। तो ये तो थोरों की बात, परंतु आम तौर पर आजकल दो बातों की चिंता लगी हुई है। युद्ध तो समझते हैं वो तो दूर है, परंतु एक तो इकोनॉमी और दूसरा इकोलॉजी। इकोनॉमी सत्ता सब तरफ पैसे बढ़ते जा रहे हैं, सब बातों का तेल का ये देखो 3 गुना बन गया है हर बात में। इकोलॉजी का बहुत असर हो रहा प्रकृति का, और फिर साथ साथ उसमें इकोनॉमी का भी। तो बाबा कहते हैं कि एक को ही मालूम है, वो ही जानते हैं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती। इस चक्कर को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। एक स्थान पर बैठे चक्रवर्ती राजा बन सकते? देखो बाबा कहां पर भी कभी प्लेन में भी नहीं चढ़े, और बाबा तो विश्व का मालिक बन गए। एक छोटी सी कुटिया में बैठ करके तपस्या करके दिन रात सेवा करके अपना ऊंच पद प्राप्त किया, तो इसने कि विश्व का चक्कर करने से चक्रवर्ती बनेंगे? नहीं, बाबा की याद से विश्व की सेवा, मनसा सेवा करो तो बस बाबा समान विश्व के मालिक बन ही जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि घूमने से नहीं, परंतु इस चक्कर को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। गाते भी हैं, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है, लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वो संपूर्ण निर्विकारी, और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सत्युग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन, कलयुग में है संपूर्ण विकारी संपूर्ण पतित। भारत की ही बात है, ये बापी आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते। इन्होंने तो सत्युग को लंबा समय दे दिया, समझती है लाखों वर्ष पहले सत्युग था, तो किसी की बुद्धि में ये बात आती ही नहीं है। अब बच्ची जानती हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं, संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है, गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है, ये आत्मा की भेंट की जाती है, ये अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? ये बिल्कुल नहीं बात। पढ़ाई से राजाई प्राप्त करना, बैरिस्टर बनाएंगे परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना न सके। यहां महाराजा तो कोई है नहीं, सत्युग के लिए तो जरूर चाहिए, जिस किसको जरूर आना पड़े। यहां किसको भी राजा ही नहीं, महाराजा तो छोड़ो राजा ही भी नहीं, और वहां फिर महाराजा, तो बाबा कहते किसको जरूर आना पड़े। बाप कहते हैं मैं आता हूं तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकता। हमको बाप बैठ पर आते हैं, ये नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परमपिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं, अब तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं, और तो शिव शंकर को इतना मिलावट कर दी है, इतना रूप भी अलग, नाम भी अलग, कर्तव्य भी अलग, तो भी उन्होंने मिला लिया। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महालक्ष्मी महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में अभी बाबा ने तीनों ही कथाओं का वर्णन किया है, सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तीजरी की कथा। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं, नरसिंह नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट में हो जाती वो फिर भक्ति मार्ग में काम आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना, हम भगवान की संतान है तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं है? बाबा बहुत सिंपल करके बता रहा, कलयुग में क्यों पड़े हैं? परमपिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचते हैं। कोई भी चीज बनती है तो नई ही कहेंगे, पुरानी तो शुरू से नहीं होती। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को भगवान ने नई दुनिया बनाई, फिर उसी एक को हक है उस पुरानी दुनिया की भी समाप्ति करना, और किसके पास वो अधिकार नहीं। तो बाबा कहते पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सत्युग के लिए राज ले रहे हैं। सत्युग में कौन होंगे? एक ने हाथ उठाया, धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं। बाबा का बहुत सुंदर उत्तर है, सत्युग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी होंगी, और भी तो राजाएं होंगे, तो जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो ठीक किया, सभी सत्युग की डिनेस्टी के बाबा के बच्चे बैठे हैं। ये निशानी फिर सत्युग की डिनेस्टी की कौन सी है? भक्ति में जिसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में रोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य ऐसे नहीं कि हम चलो सत्युग में आए तो ठीक है, नहीं, विजय माला का दाना बनेंगे तो ही फिर सूर्यवंशी के डिनेस्टी का कहेंगे। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि ये क्यों पूजी जाती है, ऊपर में फूल कौन है? माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, आंखों पर भी रखते हैं कई लोग, फिर माला फेरेंगे। माला बैठ स्मरते हैं कि कहां बाहर ख्यालात न जाए। हाथों को भी बिजी रखो, आंखों को भी बिजी रखो, बुद्धि को भी बिजी रखो, ये भक्ति की सिस्टम। अंदर राम राम की धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। हां, भक्ति का एक फायदा, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विक्रम नहीं करेंगे। कोई भी धर्म वाला हो जिसके अंदर वो भक्ति का बहुत भावना है, फिर भी पाप कर्म से कुछ तो बच जाते। बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे कि ये सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होंगी, माला फेरते मुख से राम राम करते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, कहते हैं नौदा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते, परंतु कहां कहां भक्ति जब तमो प्रधानता में पहुंच गई तो भक्ति भी दिखावट के लिए होती, मान शान के लिए कई बार होती, परंतु साथ साथ ये सोचे कि हमारी जीवन श्रेष्ठ बन जाए वो तो होता ही नहीं। मुक्ति तो दूर रही, अभी की जीवन में भी श्रेष्ठता तो इतनी नहीं आती, होता कुछ भी नहीं। ये एक नाटक है, इसमें सतो प्रधान, सत्तो रजो तमो, सबको आना ही है, वापस एक को भी नहीं जाना है। तो ऐसे नहीं कि भगत होगा बहुत पावरफुल भगत तो वो बस मुक्त हो जाएगा, घर में चले जाएगा। बाबा कहते ऊपर में जैसे कि जगह खाली हो जाती है, वैसे यहां भी बहुत जगह खाली हो जाएंगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ देवताएं कहां रहेंगे? समुद्र की तरफ नहीं रहेंगे, खाड़े पानी की तरफ नहीं, मीठे पानी की तरफ। समुद्र की तरफ नहीं होती ये बॉम्बे आदि नहीं होंगी। वह भी पहले साकार बाबा के बचपन के दिनों में बॉम्बे क्या था? मच्छी मरियानी थी, मछली पकड़ने का गांव था, मछली फंसाने वाले वहां रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी मयानी होंगी। बाबा के आंखों में आजकल करोड़ों का एक टुकड़ी सी फ्लैट मिलती है, तो बाबा तो आदि मध्य अंत जानते हैं, तो पहले क्या थी और अभी क्या होने वाली है बाबा सब बातें बताते। सत्युग में तो बॉम्बे होती ही नहीं। कोई बॉम्बे वाले बैठे हैं? एक बस कुछ कुछ बैठे हैं, ज्यादा ज्ञान स्टोर में है, अभी उनकी रिट्रीट चल रही। तो बाबा तो सीधा कहते हैं, समुद्र तो अपना स्थान वापस ले ही लेगा, तो बिल्कुल खबरदार रहे। हर एक के लिए, सिर्फ बॉम्बे वालों के लिए नहीं, हर एक को बहुत खबरदारी से चलना होगा, क्योंकि कुदरती आपदाएं जो आती है, कहां कुछ कहां कुछ कहां कुछ, दिखाती है ना कि शंकर के हाथ में सब प्रकृति नाच रही थी। नटराज का जो एग्जाम्पल देती है, नटराज का जो डांस होता वो वास्तव में है प्रकृति का डांस। सत्युग में पहाड़ियां होंगी, कौन समझता है सत्युग में पहाड़ी होंगी? शायद भाइयों ने मुरली पड़ी हुई है आज की। बाबा कहते वहां कोई पहाड़ियां आदि भी नहीं होती, कहां जाने की दरकार ही नहीं होती। हरेक का घर ऐसे होगा, महल समान, बगीचा ऐसे होगा, मुगल गार्डन से भी ज्यादा, तो फिर तो कौन कहां क्यों सफर करे। हाँ, थोड़ा घूमने के लिए निकलेंगे अपने विमान में, और विमान की भी दुनिया अभी शुरू होने जा रही है। जैसे वो गाड़ियां नीचे चलती, गाड़ी नीचे भी चलती, वो गाड़ी अपना बाजू का निकाल कर पंख बनाकर उड़ती है, ये बन चुकी है। तो सत्युग कितना दूर है? बस इतना दूर है। सत्युग की सब जो बातें हैं, बाबा कहते कि बिजली नजर में नहीं आएंगी परंतु रोशनी होंगी, वो भी विदेश में। तो भारत में भी कई कई स्थान ऐसे हैं, आपको बिजली की तार, बिजली का बल्ब नजर नहीं आएगा, परंतु बिल्कुल रोशनी, बिल्कुल प्रकाश। बिजली को लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं, वो तो भी सब तरफ चालू है। अंदर कमरे में प्रवेश करो, अपने आप ही लाइट ऑन हो जाती। तो सत्यु के आने में बाकी इतनी सी देर है, सब सामग्री तो तैयार हो गई सत्यु की। तो बाबा कहते कहां जाने की दरकार ही नहीं होगी, यहां मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट के लिए। सत्यु में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ ही नहीं होती। आपका हर रोज होलीडे हॉलिडे है, तो कहां फिर हॉलिडे करने की क्या जरूरत। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती। तो अब बच्चों को ये सब स्वर्ग की बातें अच्छी अच्छी बता करके फिर बाबा की आज्ञा, तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है तो ही वहां पहुंचेंगे। बाप कहती हैं, मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है, स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का कामकाज भी करते हैं, ये भी ऐसे हैं। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं। उस पढ़ाई में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, यहां तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट बस, मन मना भव, इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवान वाच है ना, वो समझते हैं, गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुना कर क्या करेंगे, उसके बाद तो फिर कलयुग आता तो कुछ मतलब ही नहीं। श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है, बस श्री कृष्ण आ रहे हैं, स्वर्ग की दुनिया आ रही है। वो लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़े मरेंगे, अनेक प्रकार के कलामिटीज होंगे। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए, सब कुछ जानते हैं, मालूम है ये क्या क्या होने वाला है। जिस समय वो सीन देखते हैं याद करेंगे, बाबा ने पहले से ही बता दिया, तो उसमें कोई दुख की बात नहीं। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता, मौत हो तो ऐसा। बाबा पहले से ही बता दिया कि ब्रह्मा बाबा को चाहना थी मौत ऐसी हो तो ऐसा, बस एक मिनट में आत्मा उड़ी, तो बाबा का रियलिटी वही संकल्प पूरा हुआ। बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ, खलास। जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती। बाबा को खुद की जीवन कहानी का पूर्व कल्प का मालूम था कि क्या होने जा रहा है। अब तो सबका मौत होना है, पिछाड़ी में न हॉस्पिटल न डॉक्टर रहेंगे, न क्रियाकर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, सबके प्राण तन से निकलेंगे, मूसलधार बरसात होंगी। मौत में कोई देर थोड़ी लगती है, हार्ट फेल हुआ बस फ्लड आया खत्म। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो मनुष्य फट से मर जाए, ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बीच में विश्व की हालत वो थी जो कहते थे हम सभी बॉम्ब्स को निकाल देंगे, सब बारूद फिनिश करेंगे, किसके पास भी कुछ न रहा। फिर किया ना किया क्या मालूम, परंतु फिर तो दो तीन वर्षों से अभी फिर आग लग रही है, तो तेज बॉम्ब्स भी बने जाते हैं, बहुत खर्चा भी हो रहा है। ये इतिहास की बात है कि जहां जहां बहुत शक्तिशाली देश था, उन्होंने जब मिलिट्री को खर्चा करके उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते अनेक और देशों को हक करने की कोशिश की, वो देश खुद ही खत्म हो गया। ये बिल्कुल कई देशों का सिविलाइजेशंस का इतिहास है। तो अभी कौन सा सिविलाइजेशन उस बिल्कुल घड़ी पर आकर पहुंचा है, वेस्टर्न कंट्रीज का। मैं एक देश का नाम नहीं लेती हूं, सभी मिलिट्री पर कितना खर्चा कर रहे हैं। बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। बाबा ये सब देख करके क्या कहते, ड्रामा में नूंद है। बाबा बिल्कुल डिटैच, ड्रामा में बना बनाया खेल है, कलप कलप विनाश होता है। सत्युग में तुमको ये ज्ञान रहेगा ही नहीं। बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज शुरू होता तो भक्ति शुरू होती। अब भक्ति पूरी होती है, अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुख धाम शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े, ये तो समझ गए हो। हमको बाबा को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहां बनना है। वतन में मोचरा मानी नहीं खाना है और परमधाम में तो कोई पुरुषार्थ का तो मार्जन ही नहीं, परंतु यहां ही हमें सतो प्रधान बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वो दिन आया आज, जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनेंगे। राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं, पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी और सतयुग का लकब। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वो द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आप ही पूज्य आप ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं पुजारी कभी नहीं बनता हूं, देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता, मैं की पुजारी बनता हूं। भारतवासी देवी देवताओं के भी मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे तो भक्ति मार्ग में वे ही शिव बाबा के पुजारी होते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करती हैं। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते, आस्ते आस्ते बनते हैं। निशाने भी देवताओं के वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, उस समय तो हीरे को काट कराए लिंग बनाते पूजा के लिए। भारत में तो कोहिनूर का कितना बड़ा था, अभी हम म्यांमार बर्मा में थे तो वहां पर गोल्डन पगोडा है, बुद्धिज्म का सबसे बड़ा बहुत बड़ा बड़ा स्थान, अनेक अनेक उसमें पगोड़े मंदिर बने हुए हैं भिन्न भिन्न। तो उसमें जो मेन पगोड़ा है उसका पहले तो बिल्कुल सोने का था, अभी तो पता नहीं क्या कर दिया, परंतु कुछ 15 साल पहले के फोटोज थे जिसमें एक इतना बड़ा हीरा था मंदिर के ऊपर पगोड़ा के ऊपर। अभी वो भी नहीं है, लूट करके लेके गए। मैं भी नाम नहीं लेती हूँ कि किसने लिया, परंतु 15 साल पहले इतना बड़ा हीरा उस पगोड़ा में था। तो आप सोचो सोमनाथ के मंदिर में कोहिनूर हीरा कितना बड़ा होगा, और उसको फिर टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तो बाबा कहते कि हीरों को कटकर लिंग बनाते पूजा के लिए, ये किसको भी पता नहीं। डायमंड तो हर तरफ देखते ही हैं, परंतु पता नहीं कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। ये तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है, मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसी करेंगे। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती, उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया। असल में थी देवी देवताएं, बाप कहते हैं तुम असो देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो, क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं, 5000 ईयर्स की हिस्ट्री में कलयुग की बातें ये सब है, तो बाबा कह रहे बहुत देरी से ये बातें आई है। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे, अभी संगम युग पर न पूज्य है न पुजारी है। तुम क्या करते हो, श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो ये पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है, बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती। बाप कहते हैं ये तो समझते हो ना कि हम आत्मा है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, आत्मा ने जो कर्म किया वो दूसरे जन्म में भोगना पड़ेगा। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं, आयु की बात नहीं, आत्मा की बात, पढ़ाई पूर्व की बात नहीं। बाबा आत्मा को देख करके बहुत सुंदर शिक्षाएं दे रहे। बाप कहते हैं हे बच्ची आत्म अभिमानी बनो, निराकार निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है, शरीर तो उनका है नहीं, तो वो ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें सब गुण है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। युक्ति कितनी सहज है, अक्षर ही एक है, मन मनाभव माम एकम याद करो, याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये भी जानते हो अभी हम हैं ब्राह्मण, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे, हम ही इस 84 के चक्कर में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे फिर बाबा आएंगे। ऊपर वो तो ठीक है, ऊपर से नीचे आते, परंतु सीढ़ी से ऊपर से नीचे जब तक आते हैं फिर बाबा आएंगे। बरोबर ये सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है, सृष्टि ये पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। ये तो बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्कर बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। भाइयों का अच्छा स्ट्रॉन्ग आवाज आया, बहनों का धीरे धीरे। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर पूज्य बनना है, आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पराई पढ़नी और पढ़ानी है, योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। राजाई पद का आधार योग बल, किसी से कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन से हम राजा रानी नहीं बनेंगे, किसी से और भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना, परंतु बस योग बल से महाराजा महारानी बनेंगे। वरदान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले, हाईएस्ट पद के अधिकारी भव, माया के सिर को झुकाने वाले। जैसे महान आत्माएं कभी किसके आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे आप बाप की सुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहां भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आक्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकते। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सत्युग में प्रजा स्वमान से झुकेंगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भगत झुकते रहेंगे। देखो, माया के सामने झुकना नहीं, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। स्लोगन, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। बाबा की ये बहुत अच्छी पॉइंट्स मिलती रही है तपस्या मास में। वैसे तो और भी आगे राखी आने वाली है तो उसके लिए भी विशेष तपस्या का टाइम होगा, परंतु ये तपस्या मास में जो तपस्या की बातें चली है, एक तरफ अनेक युद्ध चल रहे हैं, एक युद्ध नहीं है, अनेक है, और दूसरी तरफ बाबा के बच्चे योग बल को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अव्यक्त इशारा, कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, राइट? ठीक बात है, सेवा याद आए योग के समय। बाबा का उत्तर सुनो, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का ही संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी और कुछ याद नहीं, सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वो स्थिति होनी, वो स्थिति होनी तो धोखा मिल जाएगा। हम चाहते हैं बाबा की याद रहे, प्रैक्टिस नहीं तो बुद्धि कहाँ और तरफ चले जाती। तो फिर वो धोखा, बाबा ने कितनी वार्निंग्स दी है कि किस तरह से पुरुषार्थ करना है और अपने को आगे बढ़ाना है। तो बाबा की मीठी मीठी बातें याद कर फास्ट गति से पुरुषार्थ करें, क्योंकि अभी जो समय है ज्यादा समय रुकने वाला नहीं है। और बाबा ने ये भी कह दिया कि सब कुछ ब्राह्मणों के लिए रुका हुआ है, ऐसे बिल्कुल ज्वालामुखी योग चले जो वो बटन दबाने में समझे कि इसमें कल्याण है। बाबा ने जब ये बात कही थी कि आप लोगों के लिए रुके हुए हैं, उसमें बाबा ने ये कहा था कि ऐसी तपस्या हो जिसमें कल्याण की भावना भरी हुई हो। हमको दुख से छूटना है वो संकल्प नहीं, हम दुख को तो बाबा ने दुख की दुनिया से निकालकर संगम योगी पॉट में अपने दिल में बिठा लिया, परंतु हम सबके लिए ये सोचें कि सबका कल्याण हो तो ही कहेंगे ये महाभारत युद्ध कल्याणकारी युद्ध है। तो आप सोचो कि ये सोचे कि अभी जल्दी घर जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सेवा नहीं हो रही है, इतना घमसान है, वो कोई कल्याणकारी भावना का योग नहीं है। परंतु कल्याणकारी भावना हो तो आपके योग की शक्ति ऐसे जमा हो संगठन की, न सिर्फ एक दो यहां वहां, परंतु सारे संगठन में ऐसी योग शक्ति जमा हो तो ही फिर वो बटन दबाने वाले जो तैयार बैठे हैं उनका हाथ रुकेगा नहीं, वापस नहीं जाएगा, परंतु सचमुच सब आत्माओं की गति तो हो जाएंगी। तो तीन बातें आज के मुरली से याद करना, कौन सी बातें आप अपने लिए सोच लेना कि कौन सी बातों से मुझे अपनी मजबूत अवस्था को पक्का करना है। बाबा की याद में बैठते हैं।